ओम शांति। अभी आप लोग क्या सुनने चाहेंगे? शाम को तो काफी समय योग किया हुँ? अच्छा रहा ना? अच्छा रहा? कितना टाइम किया योग? 15 मिनट बस। संतुष्ट हो गए? ठीक रहा योग? 15 मिनट में कितना समय एकाग्रता रही? जिसकी पूरा टाइम एकाग्रता रही, जरा भी कोई संकल्प नहीं, वो आत्मा योग में बैठे केवल 15 मिनट तो भी एकाग्रता नहीं रही, माना क्या संकल्प चले? जो सुना उसका ही संकल्प चला ना, या और कोई संकल्प? जो सुना उसका ही संकल्प चला, पर उस संकल्प में योग का आनंद रहा या संकल्प ही चलते रहे? संकल्प चलते माना जो सुना उसको याद करते रहे, ऐसे ऐसे रहा। मेजॉरिटी का ये है, जो केवल उस आनंद में रहे, जो सुना उसके आनंद में मग्न रहे, वो हाथ उठाए। कैसे रहा जाए ये आपको सीखना होगा, ऐसे ना हाँ? पर अच्छा रहा, जो भी योग की समझानी सुनी वो आवश्यक रही या समझी हुई है? समझा हुआ तो पूरा ज्ञान है, पर जो समझा हुआ है उसको किस रीति अपने से इस्तेमाल करना है, अपने पर कैसे काम में लगाना है। औरों को समझाना तो सहज है, अपने से वही बात जो और को कहते हैं वो अपने से कैसे लगाई जाए, इसको कहा जाएगा योग। योग एक तो बाप के साथ और दूसरा अपने साथ भी पूरा योग है। अपने साथ अर्थात, अपने साथ अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप के साथ। तो जो सुना वो ओरिजिनलिटी के लिए सुना ना, कल आत्मा का सुना, आज परमात्मा का सुना। तो जो वास्तविकता है उसके साथ उनके चिंतन में ऐसा रहे जो मग्न हो जाए। बताया इसलिए जाता है कि वो ही चिंतन, चिंतन तो रहेगा वो, लेकिन चिंतन उस प्रकार से हो जो उसमें चिंतन करते करते मग्न हो जाए। और जब मग्न हो जाते हैं तो चिंतन रहेगा क्या? रहेगा। कहा जाता है मन संकल्प के सिवाय नहीं रह सकता है, और अगर मग्न हो जाएंगे तो संकल्प रहेगा या नहीं ये सोचना और अभ्यास करके देखना क्या होता है, फिर आपको बताया जाएगा। अच्छा, अभी की विषय कौन सी है पता है? नहीं, बाबा की आपकी पसंद है ऐसे विषय नहीं बताई गई होंगी, ऐसे ना, खाली बताया गया है कि मैं क्लास लेने वाली हूँ, और अंदर ये था कि मुझे ध्यान पे नहीं था कि मेरा क्लास है, मैं आएंगी ये तो मैंने बोला था, पर क्लास होगा मेरा ये ध्यान पे नहीं था, पर फिर भी सवेरे फोन किया था, माना रात को ही जब आ रही थी, उससे पहले, अभी नहीं, 8 बजे आ रही थी, तो बताया क्लास है, तो मैंने कहा पूरा ही क्लास के टाइम आएंगी। अच्छा, अभी का विषय ये रखा है, मुरली सुनने समय मुरली को किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। वैसे तो आप सब कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से आते रहते हैं, ज्ञान में है, कोई तो इससे भी पुराने हैं, मुरली सुनते आ रहे हो, तो अभ्यास होगा अपना। फिर भी उस अपने अभ्यास को वेरीफाई करना कि जैसा हम करते हैं वो ही ठीक है या उसमें कुछ एडिशन करनी है। अच्छा, पहली बात तो मुरली सुनते समय हमारे अंदर क्या भावनाएं भरी रही, सुनते समय हमारा अटेंशन क्या होता है, पूछ रही हूं सवाल, फिर जवाब दूंगी। और सवाल केवल सवाल का जवाब नहीं देना, जो करते हो प्रैक्टिकल वो बताना। मुरली सुनने समय अटेंशन क्या रहना है, कौन सा अटेंशन रहता है, एक एक बोले, आदि स्वरूप में स्थित रह के सुनना, आत्म स्वरूप में स्थित रह के सुनना है। हाँ बोलो, उठ के बोलो, पीछे वाले तो आवाज जरा क्लियर इधर है, सुना रहे हैं, मेरे लिए ही सुना रहे हैं। अच्छा, ये भी ठीक। और कौन बोलता है, हाँ दूसरा कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए, हाँ अपने आप को गोपी समझ के सुनना चाहिए, मुरली माना गोपी का कनेक्शन, मुरली पर गोपियां, गोपियां मस्त होती थी ना, हाँ सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं। सामने बाबा को रख करके सुने, कोई देहदारी को न देखे, भले कोई भी सुनाने वाला हो, मैं अर्जुन हूं और भगवान मेरे को सुना रहा है, ऐसे ना मुझे सुना रहा है, और भी कोई बोलने वाले है। आत्मिक स्थिति में तो ठीक, लेकिन अगर अधिक आत्मिक स्थिति में रह के सुनेंगे तो सुनने से पढ़ हो जाएंगे, इसलिए उस समय ये बात बार बार याद रहे, माना पहले ही ये याद है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। एक ने बताया ये बात कि ये ध्यान रहे कि भगवान हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, तो एक खुशी जागृत हो, जब खुशी होती है तो उस खुशी में एक तो भगवान पढ़ा रहे हैं, तो भगवान आया है पढ़ाने के लिए, मेरे को पढ़ा रहे हैं, फिर ये भी बात ठीक है कि मैं अर्जुन हूं, मुझे ही भगवान बोल रहे हैं, तो ये एक खुशी और अपना भाग्य, ये याद रहने से जब हम ये याद करते हैं ना, भगवान पढ़ा रहे हैं, तो एक तो भगवान की भावना, दूसरा भगवान के महावाक्य कितना हम ध्यान से सुनेंगे, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा एकदम सुनने के लिए। हम लोग जब मुरली सुनते थे, हमारे सामने तो साकार प्रत्यक्ष रहे, तो हमारा इधर उधर कहां भी ध्यान नहीं जाएगा, एकदम एक टिक। और हम लोग तो ये कोशिश करते थे ना, एकदम बाबा के सामने रहे, बाबा मुझे ही देख के बोले। खैर सबको तो ऐसे नहीं होगा, परंतु हम मेजॉरिटी आगे ही बैठे थे, तो बाबा तो इसको भी ऐसे ऐसे सबको देखता है ना, फिर भी तो ऐसे रहे कि जैसे बाबा मेरे को ही बोल रहा है, मेरे से बात कर रहा है, तो एक तो वो भगवान मिलने की खुशी, दूसरा मेरे लिए आया है और मुझे पढ़ा रहा है, तीसरी बात कि भगवान के महावाक्य हम इतना ध्यान से सुनेंगे जो एक भी अक्षर मेरे से मिस ना हो। हम लोग ये ध्यान रखते थे कि एक भी अक्षर, आप लोगों को शुरू शुरू में, अभी तो आप लोगों को मुरली बनी बनाई मिलती है ना, जो पढ़ते हो बाद में, हमारे दिनों में कोई मुरली नहीं छपती थी, ये सब लिखा नहीं जाता था, पहले शुरू शुरू में तो हम केवल सामने सुनते थे और हमें सामने सुनना अच्छा लगता, माना हम देखते रहे, बाबा मुझे देखता रहे और हम बाबा बोलता जाए और हम हाँ हाँ करते जाए, जैसे बरोबर मैं अंदर, जैसे वो बताते हैं ना चात्रक को बूंद मिलती है तो कैसे वो पकड़ता है बूंद को, तो ऐसी समझो भगवान के महावाक्य हम सुन रहे हैं, ऐसी अंदर भावना जैसे जो महावाक्य निकले एकदम मेरे दिल पे छप जाए। तो उसमें क्या होता था, क्योंकि बुद्धि क्लियर रही ना, भगवान के साथ जुटी रही और कुछ बुद्धि में रहा ही नहीं, जो मिलता जाता है उसको बरोबर ध्यान से सुनते हैं तो जैसे कि वो ग्रहण होता ही जाता है। और हम लोग फिर क्या करते थे कि बाद में क्लास के बाद फिर शुरू में फिर जाकर के लिखते थे। अब देखें कितना मुझे बाबा का याद है, अपनी परीक्षा खुद लेते थे, हमारे से थोड़े इस प्रकार से मेहनत की जाती थी, अपने से खुद मेहनत करते थे, फिर उसको बैठ करके लिखते थे कि क्या क्या, फिर लिख करके पढ़ेंगे। कभी तो दो बहनें समझो मिलके लिखती, कभी अकेले भी लिखते थे कि हम ये ध्यान रखते थे एक भी अक्षर, हम तो यहां तक ध्यान रखती थी कि एक भी बाबा का महावाक्य मेरे से मिस नहीं होना चाहिए। तो लिखने से नहीं, लिखने में तो कई मिस हो जाते हैं ना, परंतु मेरे बुद्धि से एक भी मिस नहीं होना चाहिए। और फिर वो पूरे का पूरा लिखते थे, फिर आपस में चेक करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये नोट्स लेना शुरू किया, नहीं तो पहले एकदम नोट्स नहीं लेते थे, सामने बैठ के सुनेंगे। और नोट्स लेने का भी तरीका हम लोगों का क्या होता था, नोट्स लेंगे देखेंगे बाबा को, जैसे हम सुन रहे हैं थोड़ा देख के लिख के फिर सामने देखेंगे। अव्यक्त बाप दादा तो कितना धीरे से बोलता है, वो तो पूरा ही लिखा ही जाता है ना, लेकिन उसमें भी देखो कई बहनें हम देखती है बस कांध नीचे ही होगा, लिखती ही रहेंगी। तो उसमें जो प्रवाह को खींचा जाए, वो शक्ति जो अनुभव होनी चाहिए, बाबा कितना प्यार से हमें बोल रहा है, वो जो प्यार की फीलिंग आनी चाहिए ना, वो कम आएंगी। और अभी ये प्रथा बन गई है कि लिखना है जरूर, बाबा भी कभी कभी मुरलियों में बोलते हैं कि लिखना चाहिए, पर कैसे लिखना चाहिए। हम लोग भले लिखते थे पीछे, वो भी कितना समय के बाद, और वो भी इसलिए लिखा जो कोई मिस करते थे तो उसको फिर कॉपीराइट करके देते थे, अपने लिए समझो नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली अपन पढ़ लेंगे, पर अपना ध्यान अपनी बुद्धि पर। तो बुद्धि मेरी कितनी क्लियर है और कितना मैं बाबा के महावाक्यों को कैच कर सकती हूँ। उसमें फिर ये ध्यान रखते थे कि जो बाबा बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि चार सब्जेक्ट है और हर मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट आती है। अभी तो ये कॉमन बात हो गई है समझने में, ये बातें बार बार क्लास में भी बताई जाती हैं। हम लोग को तो अपना ध्यान खुद देना पड़ता था और खुद ही खुद से मेहनत करते थे। तो जो जो पॉइंट समझो आज के मुरली में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, रोज रोज कोई ना कोई बात उसके बारे में आती है, तो हम तो क्या करती थी, वो सेक्शंस बना लेती थी डायरी के अंदर, या तो समझो उस समय अगर लिख भी लिया लेकिन बाद में वो सेक्शन बना लेते थे कि रोज बाबा जो इस सर्वव्यापी पर बाबा ने क्या क्या पॉइंट्स और किस किस प्रकार से बताई, तो अपने बुद्धि में वो सब प्रकार भाई सिद्ध करते जाओ, एक बात बताई दूसरी बताई तीसरी बताई चौथी बताई। और उसमें हम लोग तो ये ध्यान रखते थे कि हू बहू बाबा के महावाक्य बोले, क्योंकि भगवानो वाच्य में शक्ति है, वो भगवानो वाच्य, अगर हम वही महावाक्य बोलेंगे तो वो शक्ति से ही बोलेंगे ना। तो हम लोग का प्रयास ये रहता था। और याद करने का तरीका, चलो उस समय नोट्स लिया न लिया, हम तो उस ध्यान से सुनते थे और फिर लिखते थे, लेकिन बाद में उसको कौन सी पॉइंट्स धारणा की, समझाने की, या योग की, या सेवा की, सेवा समझाने में आ जाती है। तो वो उसमें क्या हो जाता था कि मुरली पर पूरा अटेंशन बना रहता था। कोई भी मुरली के समय बात, कोई भी और बात अपने बुद्धि में आती नहीं, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिकल स्टूडेंट लाइफ रही। वैसे तो आप लोगों की भी प्रैक्टिकल स्टूडेंट लाइफ ही है, परंतु फिर भी आजकल सेंटर्स में सेवाएं हैं और अपनी ड्यूटीज है, ये सब है, तो कोई ना कोई ख्याल आ जाता है, फलाना आने वाला है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ बातें आती है, पर इन बातों का अपने पर पूरा कंट्रोल चाहिए। चलो समझो कोई जिज्ञासु को टाइम दिया भी है तो टाइम का पता है ना। वैसे तो हमारा यही नियम तो यही है कि एक क्लास के बाद का ही टाइम देना है। अगर 8 बजे तक क्लास है तो उसके बाद का ही टाइम देना है, पर कभी कभी ऐसा होता है जो भाई उसको 7 बजे का ही टाइम है तो देना पड़ता है, तो वो तो जिसने टाइम दिया है उसको पता है और टाइम से उठ के जाएंगी। लेकिन अपना ध्यान जितना भी टाइम बैठे, ये चाहिए अपने बुद्धि पर कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल भी तब आता है, आज शायद सुबह को क्लास कौन सा था, ज्ञान की महीनता, ज्ञान पर था ना, ज्ञान क्या है। सुबह की टॉपिक क्या थी, गीता बहन की, शब्दों में अधिक सार भरा हुआ हो जिसका हम विस्तार कर सकते हैं, उस प्रकार के अगर नोट्स लेके बाकी अगर हम सामने सुने तो मैं समझती हूँ उसमें मुरली सुनने का मजा आता है। आजकल थोड़ा क्लास में सुस्ती का भी वाइब्रेशन रहता ही है, क्योंकि सवेरे उठते हो, सवेरे हम भी उठते थे, लेकिन शुरू शुरू में आओ तो बड़ा उमंग रहता है, और हम लोग सदा साथ रहे और झुंड ही था तो सदा उमंगों में रहे, इसलिए क्लास में हम लोगों को कभी सुस्ती नहीं आती थी। और सामने मुरली में कभी कभी नहीं सुनते हो, बाबा कहते हैं उबासी आई तो भी बाबा कहेगा, तो इतना माना सामने बाबा बैठा है, भगवान बैठा है, तो उसके आगे हम सुस्ती कैसे, फिर तो आंखें खुल जाती है ना भगवान के आगे, भगवान को देखने की आंखें कैसी होंगी, हो सकती है बंद, हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो ये जैसी हमारी अंदर की भावना, जितना हमारा अंदर में अपने प्रति भाव होगा, उतना ही हमारे सुनने में, देखने में, बोलने में वो उमंग बना रहेगा, और उतनी ही जितना हम उमंग से सुनेंगे उतनी हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ेगी। दूसरी बात कि जब मुरली सुनते हैं, वर्तमान समय तो मुरली में पहले प्रश्न भी होते हैं, हेडिंग भी होती है, प्रश्न भी होते हैं, प्रश्नों के उत्तर तो होते ही है, और लास्ट में सार भी होता है और वरदान भी है। कितना सब सहज आप लोगों को मिल गया है। टोटल मुरली किस पर है वो आ जाता है ऊपर में हेडिंग, फिर गिने चुने मुरली से प्रश्न निकल आते हैं, मुख्य प्रश्न, फिर अंत में उसका सार आ जाता है, धारणा युक्त सार, वो भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, केवल अटेंशन से याद करने की आवश्यकता। और विशेष सारे दिन में अभ्यास क्या रहे या कौन सी शक्तिशाली बात याद रखो, उसके लिए वरदान और स्लोगन भी मिल जाते हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूं कि अभी तो किसको भी अपनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं इसमें ये कहती हूं मेहनत करने से मजबूती आती है, और ऐसे ही मिलता है। वैसे कहा जाता है सहज मिले सो दूध बराबर, तो दूध बराबर तो मिल जाता है, लेकिन उसको हजम करने के लिए कुछ दांत चलाने की जरूरत नहीं, तो दांत तो मजबूत होंगे ही नहीं ना। और कभी कोई ऐसी सख्त चीज मिलेंगी तो खा नहीं सकेंगे, तो इसलिए भले सहज मिलता है सब, अब सब बना बनाया आप लोगों को है, ज्ञान का सार, मक्खन होके 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 मक्खन मिल गया, अभी अभी मक्खन तो कैसे खाया जाता है, परंतु मक्खन को हजम करने की शक्ति तो चाहिए ना, पाचन शक्ति इतनी मजबूत चाहिए। तो हमारी ज्ञान को ये हजम करने की कौन सी है शक्ति? पाचन शक्ति हमारी, हाँ थोड़ा थोड़ा एक एक बोले, मनन शक्ति ही ज्ञान को पाचन करने की शक्ति है। तो मनन शक्ति मेरा कितना काम करती है, अगर काम नहीं करती है मनन शक्ति तो क्या कहेंगे, ज्ञान का खजाना भरेगा? अगर ज्ञान का खजाना भरेगा नहीं तो आत्मा शक्तिशाली होंगी? इसलिए जो हम सुनते हैं चलो उस पर मंथन न करो, मनन जरूर करो। मनन और मंथन में क्या अंतर है? है अंतर? है अंतर? हाँ पीछे बैठने वाले, मनन और मंथन में अंतर है? मनन है जो हम सुनते हैं उसको बार बार याद करना, पर याद करते करते कभी उसके लगन में मगन होना, कभी उसका विस्तार भी कर लेते हैं, परंतु वो एक हमको बनी बनाई चीज मिल जाती है। और मंथन करना है कोई भी बात पर, हम उसको उसका विस्तार करें, उनके डेप्थ में जाएं, उनका और क्या भाव है, क्या अर्थ है, क्या उनकी शक्ति है, इन बातों को खोज के माना मथन करना, माना उसका और भी अंदर से रहस्य को समझने की कोशिश करना, स्पष्टीकरण करना व उनके रहस्य को और अधिक रीति से महीनता से समझने की कोशिश करना, इसको मथन कहा जाएगा। और मनन करना जो हमने सुना है उसको अंदर में रिपीट करते करते, फिर नेचुरली है जब हम उसको रिपीट करेंगे तो उनका रस हमको कितना आता है, तो उसमें रिपीट करते करते उसके महीनता में भी चले जाते हैं। महीनता कहो अथवा महानता कहो, जब बाबा के महावाक्य याद करते हैं तो बाबा की महानताएं भी हमें याद आती रहेंगी, तो वो महानताएं याद आएंगी तो हमारा बाबा के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं ना, मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार, क्योंकि मुरली बजाने वाला, मुरली किसकी है? स्वाभाविक है, अगर मुरली से प्यार है तो जिसकी है उससे भी प्यार रहेगा ना। पर प्यार का प्रमाण है, सचमुच मेरा प्यार है मुरलीधर से, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है कि हम मुरली को भूले नहीं, महावाक्यों को भूले नहीं। मुरली को अगर आप भगवानो वाच्य कहो अथवा भगवान के महावाक्य कहो तो आपके अंदर में वो महानता जागृत होगी। ये भी अपने ऊपर अपना ध्यान रखना है, या ये भी अपने को देखना है कौन सी बात मुझे उस लगन के तरफ ले जाती है, कौन से बोल, कौन से शब्द है भगवानो वाच्य। मुरली बोलते हैं तो सुनते सुनते साधारण हो गए हैं, भगवानो वाच्य कहो तो भगवान के नाम से उसकी उसका महत्व हो जाता है। महावाक्य कहो तो महावाक्य कभी भूले नहीं जा सकते, यानी महावाक्य वो सत्य ही होते हैं, ऐसा सत्य बाबा के महावाक्य समझ करके और हम उसका कदर करेंगे, अर्थात वो बात हमको धारण जरूर करनी है, ये उसका भाव अपने अंदर में प्रकट होगा। पर इस प्रकार से आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा, जिस कारण जो इसकी धारणा बननी चाहिए, क्योंकि हम भी अभी पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई को साधारण रीति से हम ले लेते हैं, लेकिन भगवानो वाच्य कहें तो उसका और महान रूप हो जाता है, और भगवान के महावाक्य कहें तो उसकी और महानता आ जाती है। हम अपने को सदा बाप की महानता में ही रखें, हमारे अंदर बाप की महानता सदा गूंजती रहे, उसके लिए अपने को देखना है कौन से बोल हमें सदा बाप की महानता याद दिलाता है। उन बोल को हम अपने अंदर बार बार रिवाइज करें, याद दिलाएं। इसको कहा जाएगा अपने को समझ करके अपने से मेहनत करना, अथवा अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रति कौन सी विधि हमारे से अप्लाई होती है वो स्वयं समझ करके उसको अप्लाई करते रहें। इसको कहा जाता है कि खुद को समझना और समझ करके अपने को चलाना। बाकी तो रिपीट करना कोई मुश्किल नहीं। आज के ज्ञान का विस्तार इतना है, ऐसा है, जिसको समझना भी कोई मुश्किल नहीं, परंतु समझ करके जीवन में धारण करना, समझ करके उसकी महीनता को जान करके स्वयं को शक्तिशाली बनाना, तब कहा जाएगा कि बरोबर हमने ज्ञान को समझा। नहीं तो ज्ञान की इतनी ऊंची महिमा क्यों कही जाती है? ज्ञान भगवान की नॉलेज, भगवान की पहचान, स्वयं की पहचान। देखें तो हमारे पास तो 7 दिन वाला भी वो बता सकता है, क्योंकि कोर्स ले लिया। 1 मास वाला तो बड़ा सहज बता सकता है, आप लोगों से भी पूछा जाए तो सब बता सकते हैं। लेकिन उसको हमने अंदर में कितना अपने में धारण किया है, वो बात हमारे अंदर कितनी, जैसे खून सारे शरीर में फैला हुआ रहता है, और खून में भी वो करते हैं ना लेबोरेटरी में, उसका क्या कहते हैं, करते हैं जांच करते हैं ना सारी, कौन से वो है, होमोग्लोबिन कितना है, फलाना कितना है, ये कितना है, वो कितना है, मतलब उसको सारी देखते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान को हमने समझ लिया है, लेकिन वो खून के समान, शक्ति के समान, आत्मा के साथ संबंध में शक्ति बोलेंगे, उस शक्ति के समान कितना हमारी आत्मा में भरा हुआ है, जिससे मेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली बनी हुई है, कौन सी बात से। ज्ञान की इतना विस्तार है, कौन सी बातें जो मुझे शक्तिशाली बनाती है। भले बाबा मुख्य बातें बताते हैं, ये बात ध्यान पे हो, ये बात ध्यान पे हो, ये बात ध्यान पे हो, जो हमें समय पर मदद करेंगे, पर सचमुच मुझे वो किस समय में किस प्रकार से मदद करती है, ये मैंने अपने पर आजमाए करके देखा है। तब कहा जाएगा कि बरोबर हमने ज्ञान को समझा। और मुरली सुनने का, मुरली का मतलब ही ये है, भले हम कहते हैं पढ़ाई है, वो पढ़ाई बुद्धि की पढ़ाई है, ये पढ़ाई केवल बुद्धि तक नहीं है, ये पढ़ाई स्वयं को, स्वयं के विस्मृत हुए स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। और प्रत्यक्ष होने के बाद, पहले तो प्रत्यक्ष हो, ये अनुभव हो, महसूस हो, और फिर उसको इतना शक्तिशाली बनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि संपूर्ण निर्विकारी बनाना। तो संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए ये बाबा हमको रोज रोज आकर के समझाते हैं। इसके लिए समय समय पर रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से धारणा की बातें अथवा ये बातें समझाई जाती है। तो मुरली को सुनने के समय, एक तो सुनने समय ये हमारा ध्यान रहे, और फिर उसको जब हम लिखते हैं उसका मनन हम जरूर करें, चाहे अपने से करें चाहे आपस में करें। चलो आपस में समझो, हमारा संग अभी यहाँ तो आप लोगों को टाइम है, और प्रोग्राम में भी ये रखा हुआ है कि मुरली को रिपीट करना है। रिपीट करने का अर्थ क्या है? रिपीट इसलिए कराते हैं
कि एक बार रिवाइज हो जाए तो हमारे अंदर उसका चिंतन चलता रहेगा।
और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो हम लास्ट में 3 मिनट योग करते हैं क्लास के बाद, अंत में पहला करते हैं, तो हमारी बुद्धि क्लियर हो जाए और सब संकल्पों से हम फ्री हो जाए और बाबा की याद में, तो एकदम बुद्धि क्लियर रहे। लेकिन फिर लास्ट में करते हैं तो जो हमने सारी मुरली सुनी उसका 3 मिनट के अंदर हम अपने बुद्धि में पूरा सार, या सार एक रीति से सार तो उसमें भी होता है, पर सार में भी कौन सी बात मेरे योग्य रही, कोई नवीन बात जरूर लेनी है, क्योंकि ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, अंदर का है। आध्यात्मिक अर्थात आत्मा का अध्ययन, तो ये आत्मा के अध्ययन के लिए ये सारी रोज हमारी पढ़ाई है। आत्मा है बिंदु, लेकिन बिंदु में 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है, तो बताओ कितना उसका विस्तार होगा। तो 84 जन्मों का पाठ जो समाया हुआ है उसको हमें अच्छी रीत से समझ लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो चक्कर है उस सारे चक्कर को बैठ के कैसा कैसा मेरा पाठ था, क्या क्या था, पर ये समझ करके अब का जो समय है उसमें मुझे अपनी वो ही स्टेज बनानी है, इसलिए मुझे उस सारे अपने पाठ को समझना है।
ये 84 का चक्कर भी बाबा हमें इसलिए बताते हैं, किस लिए बताते हैं, तो जो भी हम पॉइंट सुने उसका अपने से
या फिर उसका प्रश्न निकाले जिससे उस पॉइंट की महीनता हमें बुद्धि में आवे। प्रश्न निकालने के 2 तरीके होते हैं मुरली से। एक तो मुरली को रिपीट करने के लिए हम प्रश्न निकालते हैं, भाई प्रश्न जैसे मुरली में आता है प्रश्न, तो मुरली में प्रश्न आता है उसके लिए जवाब बाबा ने उस पर क्या समझाया है, उस समझाने को समझने के लिए, रिपीट करने के लिए वो प्रश्न है। तो एक तो मुरली से इस प्रकार के प्रश्न निकाले जाते हैं और दूसरा अपने अटेंशन के लिए, जैसे समझो बाबा अव्यक्त बाप दादा हमेशा मुरली में, जब भी जो भी बाबा की मुरली आप देखेंगे अव्यक्त बाबा की, तो हमेशा 1-2 पॉइंट कह करके फिर बाबा कहेगा चेक करो। अव्यक्त बाबा की मुरलियों में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हर मुरली के अंदर कोई ना कोई प्रकार की बाबा चेकिंग जरूर बोलते हैं, तो वो ही अपने लिए बात। अब कौन सी बाबा ने चेकिंग बोली है अगर उसको हम अंडरलाइन करते हैं, तो वो अंडरलाइन करना माना कि आगे हम उस बात की अपने में चेकिंग रखते हैं। हम तो बोलती है ये कई बार कहते हैं ना, चार्ट लिखना है रोज रोज वही चार्ट लिखना, समझ गए ना अपने को क्या क्या कमियां हैं हम जानते हैं, तो रोज रोज क्या बैठ के लिखना है। तो हम कहती है बाबा ने इतनी पॉइंट्स चेकिंग की दी है, शुरू शुरू में बाबा अव्यक्त बाबा के मूल्यों से मैंने सारी चेकिंग की पॉइंट्स, मैं समझती हूँ काफी समय तक जो भी मुरली में चेकिंग की पॉइंट आई वो अलग हम लिखती रही, ऐसे समझो काफी पेजेस खाली चेकिंग का, तो उसमें बड़ा मजा आता था। समझो चलो 8 दिन हमने 5-6 पॉइंट्स जो भी बाबा ने कही अपनी चेकिंग की, उसमें कितनी परफेक्शन आई ये तो अपने को पता। अब हमको कंप्लीट परफेक्शन तक चेकिंग रखनी है ये तो हर एक का अपना अपना है, और समझो 8 दिन जिस बात की हमने चेकिंग की मुझे पता चल गया तो वो मेरी नॉर्मल हो गई, माना वो एक रूटीन में आ गई।
तो जो बात रूटीन में आ गई वो अपने आप होती रहेंगी, पर मेरे में फिर नवीनता आए, चेकिंग का हमको उमंग बना रहे, हम समझे नए नए ढंग से चेकिंग करनी है, कैसे की जाए। फिर दूसरी 5 पॉइंट, क्योंकि बाबा रोज के मुरली में वही पॉइंट नहीं बोलता है चेकिंग के लिए। आप लोग ये ट्रायल करके देखो, जितनी भी बाबा, ऐसे तो साकार बाबा के मुरली में भी होती है चेकिंग की पॉइंट। तो ऐसे अगर हम अपना चार्ट 8-8 दिन में नया नया करें तो बताओ कितना हमारे में उमंग बना रहेगा, और अपने को चेक करने का नया नया तरीका। जब नया नया तरीका आ जाता है तो उसमें इंटरेस्ट रहता है ना, पुरानी बात हो जाती है, जानते हैं, समझ गए। तो उस रुहाब से हम नहीं कर पाते हैं तो अपनी निकाल भी नहीं सकते हैं, और नए नए तरीके से तो इंटरेस्ट रहता है। फिर उसको मिटाने की विधि, जो चेकिंग की उसमें जो कुछ कमी पेशी नजर आई उसकी विधि तो नए ढंग से हम अपनाएंगे ना। तो ये है अपने में सदा नवीनता बनी रहे, मुरली से कैसे हम नवीनता निकालते रहें। नहीं तो बीच में थोड़ी ये हवा चली थी ना, सभी कहते थे मुरली तो वही है ना, ये तो हमारा ज्ञान समझा हुआ है ना, अब कुछ नया चाहिए। और आप सोचो, आप लोगों के लिए तो फिर भी पहली बार मुरली है, कोई कोई पुरानी होंगी तो उसके लिए दोबारा हो गई, हमारे लिए कितनी बार की होंगी। हम लोगों ने तो ये मुरलियां सन्मुख सुनी है, और सन्मुख सुनने के बाद भी कितना बार रिपीट हुई होंगी, तो भी अभी भी हम पढ़ते हैं तो हमको मजा आता है। अभी भी हम 2 बार मुरली पढ़ती है, आप विश्वास करेंगे? दादी हमारी रात को मुरली पढ़ेंगी, सुनानी है, फिर सुबह को टोटल नजर से निकालेंगी, फिर तीसरा बार आके सुनाएंगी। आप लोग सुनाते हो क्लास में, ऐसे करते हो? एक बार पढ़ते होंगे, रात को पढ़ के सोते हैं, फिर सुबह को उठ के सुनाते हैं। चलो वो भी ठीक है, पर उस पर चलता रहे चिंतन, पढ़ के तो सोए, उठ के जल्दी काम में लग गई, काम पूरा करके, माना टाइम से पहुंचना है। और आजकल तो फैशन हो गया है ना, कोई योग में उठते हैं, कोई नहीं उठते हैं, और अगर उठते हैं तो फिर जाके सोते हैं, सुस्ती से बैठते हैं, फिर कहेंगे योग लगता ही नहीं, सुस्ती भरी हुई है तो कैसे लगेगा। पूरा तो जल्दी जल्दी जाना है, वो जल्दी जल्दी करने में थोड़ी चुस्ती आ जाती है, लेकिन बैठ गए तो फिर सुस्ती आ गई, और फिर उठ करके अभी तो 1 घंटा पड़ा है ना, चलो 15 मिनट आधा घंटा सो जाते हैं, फिर जो चुस्त होते हैं ना जल्दी तैयार होने में, क्योंकि कोई जल्दी तैयार हो जाती है 15-20 मिनट में, चलो इतने में जल्दी तैयार हो जाएंगी, फटाफट जल्दी जल्दी करके तैयार होके जाके बैठ गई सुंदरी पर, उस पर मथन चले, कुछ मनन करे, तो क्या है कि वो रूहाब अपने में भरता है। देखो साकार बाबा मुरली आके चलाते थे, शिव बाबा आके चलाते हैं, तो भी बाबा सवेरे, बाबा तो सवेरे उठते थे 2:30-3 बजे, बहुत करके 2-2:30 बजे बाबा उठ जाते थे साकार बाबा, फिर सोते नहीं थे, भले वो उस समय तो लेते लेते रहते थे, पर विचार सागर तो मथन बाबा का चलता ही था ना, तो वो तो जागृत अवस्था हो गई ना। और कभी कभी तो शुरू में तो बाबा लिखते थे उस समय उठ करके, और फिर 5 बजे के बाद, 5 बजे तो बैठ जाते थे, 5:30-5:30 बजे वो न्यूज सुनने के लिए 15-20 मिनट, तो फिर बाबा जागते ही रहते थे, क्योंकि बाबा का तो विचार सागर मथन चलता था, लेकिन बाद में भी फिर तैयार होके भी बाबा एकांत में रतन करते थे। यूं तो शिव बाबा आके मुरली चलाता है, लेकिन रथ को भी तो तैयार रखना पड़े ना, जो उसके अंदर वो भरा रहे, जो सुनने वालों को इतना मजा आए। तो अगर हम उसका थोड़ा मथन करके, मथन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें अपना नया ज्ञान मिला दें, मथन करने का मतलब माना जो हमने पढ़ा है उसका रस, भगवानो वाच्य का रस हमारे में भरा रहे, जो सुनने वालों को लगे कि भगवानो वाच्य है, उनको इससे नवीनता महसूस हो। दादी मुरली सुनाती है तो ऐसे लगता है ना, कितनी आज अच्छी थी मुरली, कितना अच्छा सुनाया। तो उसी रीति हमारे अंदर भी वो कला भरती जाए, तो ये है अंदर ही अंदर हम अपने में जो बाबा की शक्ति है, जो बाबा की महानता है, जिस महानताओं से बाबा आकर के हमें ये सुनाता है, जिन भावनाओं से बाबा आकर के हमारे सामने मुरली चलाता है, वो भावनाएं मेरे अंदर इमर्ज हो और हम भी उन भावनाओं से आकर के सुनाएं, तो उसमें सुनने वालों को भी मजा, बल्कि सुनाने वाला भी खुद महसूस करेगा अपने लिए जैसे कि मुझे ही बाबा सुना रहे हैं, खुद सुनाते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे बाबा मुझे सुना रहा है। ये है अपने ऊपर अटेंशन, अथवा अपने में नवीनता बनी रहे, अपने अंदर बाबा की भावनाएं इमर्ज हो और वे भावनाएं हम औरों तक पहुंचा सके, ये सारा ही हमको मुरली से मिलता है। बाबा कहते हैं ना, सब खजाना मुरली में भरा हुआ है, मुरली हमारा भोजन है, मुरली हमारा अंजन है, मुरली हमारा अमृत है, सब कुछ मुरली है। तो मुरली में जब इतना सब कुछ भरा हुआ है, इतने सब का हमें मुरली से अनुभव मिलना चाहिए। तो मैं प्रश्न निकालने का बता रही थी कि दो प्रकार से प्रश्न निकाले जाते हैं, एक तो समझो प्रश्न जिसका उत्तर मुरली में है, जो स्पष्टीकरण बाबा ने बताया है, और दूसरा प्रकार से कि जो मेरे योग्य बात है, अथवा इसको ऐसे कहें जिस बात को हम कुछ महीनता से उस पर सोच सकते हैं। इसी प्रकार से भी हम प्रश्न निकाल सकते हैं, जिसको हम जिसके महीनता को हम सोच सके, अर्थात उस पर हमारा कुछ डीप सोच चले, उस महीनता से सोचने का भाव ये है कि बाबा के महावाक्यों में भगवान की शक्ति किस प्रकार से बनी हुई है, मना समाई हुई है, ये हमें महसूस होना चाहिए। तो थोड़े में मुरली को हमें किस प्रकार से सुनना है, मनन करना है और अपने से लगाना, अथवा अपने द्वारा दूसरों को मुरली से भगवान के महावाक्यों का अनुभव कराना, इसको कहा जाएगा वास्तव में यथारथ भगवान की पढ़ाई है। जो पढ़ाई हमें अनुभव कराती है कि सचमुच वास्तव में हम इसी पढ़ाई से बड़ोबर सो देवता बनते हैं। एक तो है हम पॉइंट्स के अनुसार समझाते हैं कि ये पढ़ाई देवता बनने की है, मनुष्य से देवता बनाने की है। दूसरा है कि ये हमारा अनुभव हमें महसूस कराता है बड़ोबर ये पढ़ाई हमें सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवता बनाती है। तो उस दैव स्वरूप का अंदर ही अंदर स्वयं को अनुभव होता रहता है, अथवा ऐसे कहें कि वो देवता स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसको वास्तव में कहा जाएगा मुरली सुनने का मजा। ओम शांति। अच्छा, अभी इसका विस्तार करे तो बहुत है, ऐसे तो मुरली उठा करके अभी ये भी है प्रोग्राम कि आप लोगों को मुरली कैसे पढ़नी है, पढ़ के सुनानी चाहिए या जो पढ़ के सुनाते हैं उस समय का अपना क्या अनुभव होना चाहिए, वो फिर थोड़ा दिन ये ट्रेनिंग ले लो, फिर आपको वो बताया जाए और फिर आपको भी उसका अभ्यास कराया जाए। तो योग के लिए अभी जो रिजल्ट सुनाई उसी के अनुसार थोड़ा अपने से बातें करो। एक घंटा योग का रखा है इसलिए कि आधा घंटा आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, समझानी मिल जाए, तो समझाने में समझाते समझाते 5-10 मिनट आगे निकल ही जाता है और फिर 15-20 मिनट काम इंट्री से ही योग कराया ना, योग की लेवल पकड़ सकते जिसमें हमारी मग्न अवस्था बनी रहे, अथवा योग का जो वास्तव अर्थ हम बताते हैं उसमें हम पूरा पूरा स्थित रहें और वो अपने को चेक करके रोज के डायरी में अपना योग का चार्ट इस प्रकार से अपने लिए लिखते रहो। वो चार्ट तो अलग है जो आपको पेपर दिया गया है, लेकिन ऐसा चार्ट अपने डायरी में अपने लिए लिखते रहो कि रोज की हमारी प्रोग्रेस क्या हो रही है। समझो सारे दिन के जो क्लासेस सुने उसमें प्रोग्रेस के अनुसार आज के दिन में कौन सी बातें हमारे प्रोग्रेस के लिए जरूरी थी अथवा प्रोग्रेस के लिए मिली, ये अपने रिजल्ट रात को अपने लिए जरूर लिखा, तब तो कहा जाएगा कि आप अच्छी रीत ट्रेनिंग से ब्रह्मा कुमारी जीवन का सच्चा पुरुषार्थ क्या है। ट्रेनिंग माना यह जीवन कितनी मूल्यवान है, जीवन के अंदर क्या क्या प्राप्तियां हैं उसका अनुभव आप कर पाएंगे। ओम शांति। आज का चार्ट लिखा है, रात को लिखेंगे हाँ? कंपलसरी रात को ही लिखते हो, इसके बाद तो कमरों में आवाज होता होगा।